हरे कृष्ण। तो श्रीमद् भागवतम क्लास में आप सब भक्तों का स्वागत है। और इस समय जो अध्याय चल रहा है श्रीमद् भागवतम में, कैंटो 6 चैप्टर 16 और वर्स जो है 5, 6, 16, 5। तो आप सब लोग हमारे पीछे बोलने का प्रयास कीजिए, बंधु ज्ञाति अरि मध्यस्थ मित्र उदासीन विदिशः द्वेषी सर्वे एव हि सर्वेषां भवन्ति क्रमशः मिथा। हमारे पीछे बोलने का प्रयास कीजिए, बंधु ज्ञातिरि मध्यस्था मित्रो उदासीन द्विषः सर्व एव हि सर्वेषां भवन्ति कर्मशो मिथा। बंधु ज्ञातिरि मध्यस्था मित्रो उदासीन द्विषः सर्व एव हि सर्वेषां भवन्ति कर्मशो मिथा। बंधु ज्ञातरि मध्यस्था मित्रो उदासीन विदिशः सर्व एव हि सर्वेषां भवन्तु कर्मशो मिथा। शब्दार्थ हमारे साथ आइए पीछे, बंधु दोस्त, ज्ञाति कुटुंबी, अरि शत्रु, मध्यस्था बिचोलिए, मित्र शुभचिंतक, उदासीन उदासीन, विदिशः अथवा द्वेषी, सर्वे सभी, एव निसंदेह ही निश्चय ही, सर्वेषां सबों का, भवन्ति होते हैं, कर्मशा धीरे धीरे, मिथा परस्पर। अनुवाद इस प्रकार है, यह भौतिक जगत नदी की भांति प्रवहमान है जो अपने जीवात्मा को लिए जा रहा है और जिसमें सभी लोग समयानुसार मित्र कुटुंबी तथा शत्रु बनते रहते हैं। वे उदासीन मध्यस्थ द्वेषी तथा अन्य प्रकारों से कार्य करते हैं, इतने पर भी कोई किसी से स्थायी रूप से संबंध नहीं है। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा, श्री प्रभुपाद जी की यह हमारा व्यवहार सिद्ध अनुभव है कि जो व्यक्ति आज मित्र है वही कल शत्रु बन जाता है। मित्र अथवा शत्रु, परिजन या बाहरी लोग जैसे संबंध हमारे आचार व्यवहार से उत्पन्न होते हैं। चित्रकेतु अपने मृत पुत्र के लिए शोक कर रहे थे, किंतु वे चाहते तो इस स्थिति को भिन्न रूप से सोच सकते थे। वह यह सोच सकते थे कि जीवात्मा पिछले जन्म मेरा शत्रु था जो अब मेरा पुत्र बनकर उत्पन्न हुआ है और मुझे कष्ट पहुंचाने के लिए असमय प्रयाण कर गया है। तो ऐसा सोचकर वे शोक करने के बजाय अपने शत्रु की मृत्यु पर उल्लासित क्यों नहीं हुए? जैसा कि भगवद गीता तीसरे अध्याय के 27वें श्लोक में कहा गया है, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशा। वास्तव में प्रकृति के गुणों की संगति से ही सब कुछ घटित होता है। अतः सतोगुण की संगति से जो आज मेरा मित्र है वही कल रजोगुण तथा तमोगुणों की संगति से मेरा शत्रु बन सकता है। प्रकृति के इन गुणों के कार्यशील होने से ही हम मोहवश अन्य को मित्र पुत्र शत्रु या पिता मान बैठते हैं। हरे कृष्ण। तो श्रीमद् भागवतम में आज का श्लोक भी जो है बहुत ही रोचक है और बहुत ही सच्चाई से अवगत कराने वाला है। जैसे कि इसका अनुवाद हमने पढ़ा, यह भौतिक जगत नदी की भांति प्रवाहमान है जो अपनी जीवात्मा को लिए जा रहा है और जिसमें सभी लोग समय अनुसार मित्र, कुटुंबी तथा शत्रु बनते रहते हैं। वे उदासीन, मध्यस्थ, द्वेषी और अन्य प्रकार से कार्य करते हैं। इतने पर भी कोई किसी से स्थायी रूप से संबंध नहीं रखता। तो जीवन की सच्चाई है जो हम लोग वक्ताओं के द्वारा, कई प्रकार के एग्जाम्पल्स के द्वारा इस चीज को समझने का प्रयास करते हैं कि ये भौतिक जगत जो है टेम्परेरी है जी, और यहां पर संबंध भी टेम्परेरी है। तो आज के श्लोक में उसी चीज को बताया जा रहा है और एक बड़े सुंदर एग्जाम्पल के साथ कि जिस प्रकार बता रहे हैं कि भौतिक जीवन यहां पर बता रहे हैं क्या है, नदी की भांति है जो सदैव बहती रहती है। और नदी में, नदी के किनारे जो रेत के कण हैं, पत्थर इत्यादि हैं, वो भी साथ में बहते रहते हैं। अब जो ये रेत के कण हैं, इनकी तुलना जीवात्माओं से की जा रही है। और क्या होता है कि जब रेत के कण बहते हैं साथ में तो कई कण बहुत नजदीक होते हैं, कुछ कण मिलकर पत्थर का रूप ले लेते हैं, मिट्टी के ढीले का रूप ले लेते हैं, कुछ अलग अलग चलते हैं, कुछ इकट्ठे होने के बाद किसी दूसरे पत्थर से टकराने के बाद फिर से अलग हो जाते हैं और इस प्रकार बहते चले जाते हैं। इसी तरह एक एग्जाम्पल और हमने सुना है कि नदी में जब पानी बहता है तो कुछ तिनके जो हैं कुछ समय के लिए एकत्रित हो जाते हैं लहर से, और जब दूसरी लहर आती है कुछ समय बाद फिर से एक लहर उनको, उन तिनकों को अलग कर देती है। सुना है आप लोगों ने मैंने? तो यहां पर उन्हीं संबंधों की बात की जा रही है कि जिस प्रकार हम लोग इकट्ठे होते हैं और कुछ ही समय के बाद, समय के अंतराल के बाद फिर से जुदा हो जाते हैं। कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है तिनकों का इकट्ठा होना और अलग होना, रेत के कणों का इकट्ठा होना और अलग होना। एक ट्रेन में या एक बस में सफर करते समय किसी कंपार्टमेंट में अंदर बैठना, कुछ लोगों से बात करना और फिर अपनी अपनी डेस्टिनेशन में चले जाना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सिंपल होता है, दिखता है। लेकिन जब यही एग्जाम्पल हम लोग अपने जीवन के साथ जोड़ते हैं और उस परिवेश से देखते हैं कि किस प्रकार पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर हम लोगों को किसी एक परिवार में भेजा गया है और उस परिवार में आने के बाद या जन्म लेने के बाद उसी नदी की रेत के भांति कुछ कण हमसे मिलते हैं, कुछ हमारा बहुत ज्यादा साथ देते हैं और कुछ कण हमें जुदा कर देते हैं, कारण बनते हैं। जैसे यहां लिख रहे कि कुछ तो उदासीन जिनका हमसे कोई संबंध ही नहीं है। अब जिनसे आपका संबंध नहीं है और उनका संबंध नहीं है या उनसे आपका संबंध नहीं है तो उदासीन की भांति रहते हैं, मतलब देयर इज नो रिलेशन, नो मोशन, नो इमोशन, ठीक है ना। काफी लोग ऐसे ना, जैसे आप यहां बैठे और उधर कॉर्नर पे वो प्रभु जी बैठे, आप एक दूसरे को जानते नहीं है तो ठीक है, मुझे क्या फर्क पड़ता है नहीं जी। लेकिन आप यहां बैठे हैं और आप यहां बैठे सॉरी और आपके पीछे बच्चा बैठे, ठीक है, तो कोई संबंध है तो फर्क पड़ेगा अगर कुछ होगा तो पड़ेगा, क्यों, यहां पर एक संबंध आ गया, ठीक है ना, बिल्कुल नजदीक भी है, संबंध बन चुका है। उसी तरह कुछ उदासीन की भांति है रेत के कण जिनका हमसे कोई लेना देना नहीं, कुछ ऐसे जो बहुत नजदीकी हैं, फ्रेंड्स हैं, और जी आप आते हो भागवत में, हाँ जी मैं भी आता हूं, तो इस तरह की दूर की दोस्ती है, और कुछ एक परिवार के संबंध के कारण मिट्टी के ढेले के बराबर एक पत्थर के रूप में आ गए हैं, और कुछ लोग द्वेषी हैं, ये वो लोग हैं जिनसे आए दिन टकराव होता रहता है, ठीक है ना, नदी में चल रहे हैं तो टकराव होने से कुछ छूट जाते हैं, समय के अंतराल, समय क्योंकि काल के हिसाब से चलता है ना, काल हमेशा चलता रहता है, तो उस संबंधों को भी छोड़ा दिया जाता है। तो इतना सुंदर एग्जाम्पल है, अगर इसको हम लोग अपने जीवन में सोचें समझें तो फिर शोक करने की कभी क्या होगा, जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिया क्योंकि बड़ा शोकाकुल था, वो रिश्तेदारी के बोध से मारा हुआ था उसे, है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी, दायित्व, कर्तव्य, है ना, रेस्पेक्ट ना, इन तरह की चीजों से पूरी तरह ग्रस्त था अर्जुन उस समय। श्री श्री राधा राधे करण भगवान की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, पिताए गौर प्रणाम। और हमारा इस संसार में बताया जाता है कि ये जो मोह है और जो शोक है, पहले तो मोह होता है किसी भी चीज से और फिर उसके जुदा होने पर शोक होता है ना, तो ये हम लोगों को ले डूबता है। तो ये जो एग्जांपल्स दिए जा रहे हैं शास्त्रों में, ये जो चीजें समझाई जा रही हैं, ये नदी के कणों के लिए नहीं है या वो समुद्र में इकट्ठे हुए तिनकों के लिए नहीं, किन के लिए है? हमारे लिए, कि मेरे लिए, कि मुझे अपने आप को उस एग्जाम्पल में फिट कर देखना है, ठीक है ना। जिस अध्याय को हम पढ़ रहे हैं राजा चित्र केतु के परमेश्वर से भेंट, राजा चित्र केतु के जो है लगभग बताते हैं 1 करोड़ पत्नियां थी लेकिन किसी से भी संतान नहीं थी, कितना दुख। पहले तो कई लोग वो दुखी होते हैं जिनका विवाह नहीं हो रहा होता, ठीक है, पहले तो वो दुखी होते हैं कि मेरा विवाह नहीं हो रहा, तो एक दुख है कि नहीं। वो क्या देखते हैं कि सबका विवाह हो गया, मैं ही रह गया या मैं ही रह गई, भगवान क्या मुझे नहीं देख रहे, 16 सोमवार ये वो पता नहीं क्या क्या, और फिर वो उनको देखकर भी कंपेयर करते हैं अपने आप को लोग, जिनके फिर उनको पता चलता है मेरी एक फ्रेंड है या मेरा एक दोस्त है उसकी भी शादी हुई है बट उसकी कोई संतान नहीं है, वो भी दुखी है लेकिन वो क्या कहता है, अरे तेरी शादी तो होगी कम से कम, है ना जी, मेरे से तो सुखी है तू। और वो क्या कहता है, अरे भैया इससे बड़ी शादी ना ही होती तो वो व्यक्ति दुखी ज्यादा है। और चलो मान लो किसी तरह हो गया विवाह, ठीक है, अच्छा वो जो जिसकी संतान नहीं है वो अलग परेशान है, ठीक है जी, तो उसका दूसरा मित्र है जिसका विवाह हो चुका है उसकी संतान भी है, वो उससे पूछता कैसा चल रहा है सर, कहता है बेटे ने नाक में दम कर रखा है, इससे बढ़िया क्या होता ना होती तो अच्छा, ठीक है ना, तो वो अलग परेशानी से परेशान है, ठीक है ना, अब एक ही है उसके, तो फिर उसका एक और दोस्त है उसकी भी संतान है, कहना मानने वाली संतान है लेकिन वो क्या कह रहा है, परेशान है सुखी है, बताइए, उसे परेशान होना चाहिए सुखी होना चाहिए, बोलिए ना, सुखी होना चाहिए ना, नेचुरली सुखी होना चाहिए, और क्योंकि वो सुखी है यही कारण है उसका इस भौतिक जगत में बार बार आने का। हाँ मोह हो जाता है, मेरा बेटा मेरा बच्चा इसने मेरा नाम रोशन किया है या करेगा, फिर इसका भी बच्चा होगा उसकी शक्ल देखूंगा, इसको बिजनेस देना है, इसको ये करना है, इसको सेटल करना है, तो वो जो शोक और लच्छा है भौतिक जगत में है वो क्या है, वो और ज्यादा क्या है, खतरनाक परिस्थिति है, क्यों, क्योंकि उसको अपने बच्चे से प्रेम हो गया, उससे मोह हो गया, मां की ममता ने उनके प्रेम की उनके हृदय की ग्रंथियों को उस दूसरे हार्ड मास के पुतले से इतना अटैच कर दिया कि अब जब कभी उसको उह आ आउच होगा तो इनको भी होगा, है कि नहीं, और इतनी अटैचमेंट अंतिम समय तक रहेगी, जिम्मेवारियां पूरी करनी है, कर्तव्य पूरे करने हैं, मेरा बेटा मेरा ये मेरा वो, और उस आसक्ति के साथ जब व्यक्ति संसार को त्यागेगा तो कहां जाएगा, दोबारा इस संसार में आएगा, हम हम लोग चौथे स्कंद में पढ़ते हैं राजा वेण रंग की कथा, उनकी भी संतान ऐसी हो गई थी और इतनी खतरनाक थी, मतलब बहुत जिसे बोलते हैं कि दुष्ट थी। तो वो क्या प्रार्थना करते थे भगवान से, पहले तो थी नहीं और जब हुई तो ऐसी निकली, और जब उल्टी निकली तो उन्होंने भगवान से कहा, शास्त्र भी कह रहे हैं कि वो क्या चाहता था कि इससे तो ना होती तो वैराग्य उत्पन्न हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि पुत्र जब संतान अगर बिगड़ जाए तो ये भी कई बार क्या होता है, एक वैराग्य का कारण बनता है, नहीं तो व्यक्ति की अटैचमेंट तो संसार में बनी रहेंगी तो उनको भी वैराग्य होगा। तो संतान कैसी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए बुरी होनी चाहिए? बताइए, बताइए। बुरी होनी चाहिए सो दैट कि हमारा वैराग्य उत्पन्न हो जाए जल्दी से, उसके कष्टों को देखकर दुखों को देखकर इस संसार से बाहर निकलने का मन करे, नहीं तो हम तो छोड़ेंगे नहीं। बेटा तूने रोटी खा ली? बेटा रात को कितने बजे आया था? अच्छा बैलेंस शीट दिखा? अच्छा दुकान ठीक चल रही है? करते 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 पीछे ही पड़ रहे थे उसके। अच्छा फिर वो संतान भी हो गई, अच्छा बेटा तू जा मैं खिलाऊंगा इसको, है ना, हम पूरा दिन खिला रहे हैं उसको, ठीक है। तो इस प्रकार जो है अटैचमेंट बढ़ जाती है अच्छी संतान से, और फिर बुरी संतान से क्या होता है, वैराग्य उत्पन्न होता है। देखिए कहने का मतलब यह है कि संतान चाहे बुरी हो चाहे अच्छी हो चाहे ना हो, विवाह हो चाहे ना हो, लेकिन जो कृष्ण भावनामृत है, अगर कोई व्यक्ति इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं कर रहा तो उसके लिए इस संसार की सारी सिचुएशन दयनीय है, कष्टदायक है। क्योंकि जब वो भक्त बनने का प्रयास करता है, साधना भक्ति का पालन करता है, तो उसको सच्चाई से अवगत होता है, पता चलता है कि हाँ क्या सही है क्या गलत है। तो अगर वो उसकी संतान अच्छी भी है तो फिर वो क्या करेगा, शास्त्रों के आधार पर देखने का प्रयास करेगा, भक्ति करेगा, उसको भी जोड़ने का प्रयास करेगा। संतान बुरी है तो भी भक्ति करेगा, उसको भी जोड़ने का प्रयास करेगा। संतान नहीं है तो भगवान को अपना पुत्र मानेगा तो भी भक्ति करेगा। विवाह अगर नहीं हुआ तो भी भगवान की भक्ति करेगा, ठीक है ना। भौतिक कंडीशनिंग, भौतिक पर्यावरण, एनवायरमेंट को क्या बोलते हैं, वातावरण से हमारी भक्ति डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, यह हमारा सबसे पहला कर्तव्य है। जिनको शरीर प्राप्त हुआ है यह हमारा सबसे पहला कर्तव्य, उसके बाद दूसरे कर्तव्य है हमारे, है कि नहीं। तो यहां पर राजा चित्रकेतु की संतान नहीं थी, दुखी थे, संतान हो गई सुखी हो गए, संतान फिर से चली गई फिर से दुखी हो गए। और संबंध क्या होते हैं संसार में, जैसे ही कोई हमारे करीब आता है, कहीं कथा सुन रहे थे हम तो मैं भूल गया उस व्यक्ति का नाम, उसने रिलेशनशिप पे एक बहुत अच्छी बुक लिखी और बड़े तादाद में वो किताबें लिखी उसने, पब्लिक रिलेशन पर थी, रिलेशनशिप पर थी, मैं नाम भूल गया, हाउ टू विन फ्रेंड्स बुक का नाम था, राइटर कोई होगा। तो उन्होंने एक बुक लिखी कि हाउ टू विन फ्रेंड्स, कि भाई कैसे दोस्तों के दिल जीते हैं, दोस्तों को कैसे बनाएं। नहीं नहीं उनकी नहीं, ये तो अभी इसमें मुझे मेरे मित्रों से बचाओ खाली मित्र ही नहीं संबंधियों से भी बचाओ परिवार वालों से भी बचाओ। हम लोगों ने भागवतम में ही पढ़ाया है, आपको याद होगा पंचम स्कंद में था शायद या चौथे स्कंद में था, कि इस भौतिक जगत को एक जंगल के रूप में तुलना की गई है भवाती, हाँ, और जो व्यक्ति है वो जब जंगल के अंदर घुस गया अर्थात जन्म हो गया उसका, तो वहां पर नाना प्रकार के जीव जंतु हैं, जो उसका खून चूसते हैं, है ना, उसको मारने के लिए पीछे पड़े। और जब भागता अपनी जान बचाने के लिए तो इतने सारी कष्टदायक झाड़ियां, कांटे, कटीले पेड़ हैं जो छील छील कर लहू लुहान हो जाता है। भागवतम में अवरोध परिवार की है। तो उस जंगल की तुलना की जा रही है इस भौतिक जीवन से, और जो खून चूसने वाले लोग हैं उनकी तुलना की जा रही है भेड़ भेड़ियों की किससे, परिवारजनों से, जो धीरे धीरे हम लोगों को लाओ और दो, ये है वो है, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं, तुम ऐसी हो, तुम वैसे हो, नाना प्रकार के जो है लगते हैं। और मित्रगण हैं, सब कुछ है, कष्ट इतने सारे, आदि दैविक आदि भौतिक आदि कलेश सब मिलते हैं हमें, तो नाना प्रकार के जो है कीट, जो झाड़ियां हैं वो हमें लहू लुहान करती रहती हैं, उससे तो व्यक्ति परेशान ही रहता है, रास्ता भी नहीं जानता क्योंकि घना अंधेरा है, अंधकार में जी रहा है। तो भागता है बचने के लिए, भागता है, थक जाता है लेकिन भागता है, उसको लगता है कि अभी रास्ता मिलेगा, लेकिन डायरेक्शनलेस, उसको मालूम नहीं जाना किस तरफ। तो जब तक देखता है काफी दूर तक, जब नहीं मालूम पड़ता उसको कि कहां है रास्ता, तो कहता है चलो अब इस तरफ भागता हूं, तो फिर इधर इतना भागता है, फिर इधर भागता है, बस भागते रहता है अंधेरे में, उसको रास्ता नहीं दिखता है ना। हमारी कंडीशन भी वैसे ही है, सुबह से लेकर शाम तक भाग रहे हैं, एक योनी से दूसरी योनी में भाग रहे हैं, अपने को बचाने के लिए भाग रहे हैं, दुखों से भाग रहे हैं, कष्टों से भाग रहे हैं, सुख के लिए भाग रहे हैं, उजाले के लिए भाग रहे हैं ताकि जंगल से बाहर निकलें, लेकिन मिल नहीं रहा, रास्ता नहीं मिल रहा। तो अगर रास्ता मिलता है तो किसके थ्रू मिलता है, गुरु के माध्यम से। अचानक वहां पर कोई व्यक्ति मिलता है, ओह हमारी हालत देखता है, अरे तुम कहां इस जंगल में भटक रहे हो, वो कहता है मुझे रास्ता बताओ, वो बोलता है मुझे रास्ता बताओ, वो कहता है इस तरफ जाओ, तो जाता है उस तरफ तो रास्ता मिल जाता है। हमारी स्थिति उससे भी बेकार है, हमें अगर साधु मिलता हम ये नहीं बोलते रास्ता बताओ, हम कहते हैं हमें और फंसाओ, बताओ घना जंगल और किस तरफ है, अभी हमारी और डिजायर्स हैं, अभी तो हम चाहते हैं हम ये करें, फिर ये बने, फिर वो हो। वो कहते अच्छा और मरना है, अच्छा इधर और खतरनाक जानवर है, इधर चले जाओ, यहां का रास्ता और तंग है, कटीली झाड़ियां हैं, नाना प्रकार के पहाड़ हैं, गिरोगे मरोगे, खूब मजा आएगा, जाओ इधर से जाओ। हाँ जाओ, वैसे गुरु तो नहीं बताते इस तरह, लेकिन जो चीटर्स होते हैं, दोज हू वांट टू बी चीटेड, जो चाहते हैं कि हम लोगों को कोई चीट करे, जो अभी भी चाहते हैं इस जंगल में हमें और क्या मिले, कष्ट मिले, तो वो भी देखते हैं कि कोई व्यक्ति हमें मिले जो बताए, तो फिर उनको चीटर्स मिलते हैं गुरु के रूप में, फिर वो बताते हैं यहां चले जाओ, इधर हाथी भी है, पागल आते भी है, इधर चले जाओ, यहां तो शेर भी है, तो उधर भेजेंगे। तो भौतिक इच्छाओं का मतलब इस संसार में और अधिक धसना, ये वो दलदल है। दलदल में कभी फंसे हो आप लोग, कोई नहीं फंसा कभी नहीं, यहां तो होते ही नहीं है ना दलदल, तो कभी बनाना घर पे बनाना, मिट्टी विट्टी लाना, काफी जब जब कभी बरसात हो तो वहां पर मिट्टी के एरिया में जाना, या रोहनी में आ जाना, आजकल कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई तो बहुत मिट्टी है वहां पर। तो जब दलदल में व्यक्ति जाता है तो एक पैर जैसे दोनों पैर उसके अंदर घुस जाते हैं, और धीरे धीरे नीचे जाता है वो, तो पहले बड़ी मुश्किल से एक पैर बाहर निकालता है, और अभी कहां रखेगा वो, जगह ही नहीं, तो फिर से उसे मिट्टी पे रखना पड़ता है। तो जैसे मिट्टी पे रखता है तो वो फिर पैर नीचे जाता है, और दूसरा जो है खींचने की कोशिश करता है ऊपर, बड़ा मुश्किल, फिर जब खींच भी लेता है तो पूरा वेट किस पे आता है, जो पैर रखा था, तो वो फिर और नीचे चला जाता है, और इस प्रकार दलदल में वो धीरे धीरे धंसता चला जाता है, जब तक कि उसको ऐसा स्ट्रांग सरफेस नहीं मिलेगा जहां पर पैर रखने के बाद वो पैर नीचे न जाए, तब तक उसको कोई बचा नहीं सकता। अभी आप यहां पर बैठे हुए कैसा फील कर रहे हो, नीचे जाते हुए फील कर रहे हो, कैसा फील कर रहे हो, अच्छा फील कर रहे हो, बचे हुए हो, सेफ हो ना, हाँ इस तरह का सरफेस चाहिए। तो बताते हैं कि जो लोग डायरेक्शनलेस है, जिन्हें पता नहीं क्या करना है, इस जीवन को जी रहे हैं खाली, एक शब्द है आप लोग काफी बोलते होंगे, एवं ही जी रहे बस सुना आपने, एवं ही, एवं ही का मतलब क्या होता है, एवं ही जी रहे बस ये संसार पूरा एवं ही है। किस तरह के लोगों से भरा हुआ है, एवं ही, जो जी रहे हैं बस, एवं ही जी रहे हैं बस, मतलब क्या होता है इसका और अच्छा मतलब, बेवजह जी रहे हैं, बिल्कुल लक्ष्य ही नहीं है जीवन का, उद्देश्य विहीन जिंदगी जी रहे हैं, आहार निद्रा भय मैथुन उसी में फंसे हुए, भाग रहे हैं कूद रहे हैं, कभी हंसते हैं कभी मुस्कुराते हैं कभी रोते हैं कभी दहाड़े मारते हैं, उनसे पूछे कहां जा रहे हो क्या कर रहे हो क्या लक्ष्य है पता नहीं, क्यों जी रहे हो ऐवे जी रहे हैं। तो ये संसार जो है इस तरह के लोगों से भरा हुआ है जो ऐवे जी रहे हैं। तो हम लोगों को ऐवे नहीं जीना, हम लोगों को उनसे अलग होकर कृष्ण भावनामृत के लिए जीना है। और इस संसार में जो सबसे बड़ी हर्डल है, जो सबसे बड़ा हमारा अटैचमेंट है, फैमिली अटैचमेंट, उसको खत्म करना चाहिए। जब श्रीवास आंगन में श्रीवास जी के पुत्र का देहांत हो गया, गौरांग महापुर नृत्य कर रहे हैं कीर्तन कर रहे हैं उनके घर में, तो श्रीवास जी ने जब देखा कि घर में रोने की आवाज आ रही है तो अंदर गए तो क्या देखते हैं कि उनकी पत्नी के गोद पर उनके पुत्र का सर है और वो विलाप कर रही है जोर जोर से। उसने कहा क्यों रो रही है, तो उन्होंने रोते हुए कहा कि हमारा पुत्र चला गया। अच्छा ठीक है, लेकिन तुम तो विलाप थोड़ा धीरे करो, क्योंकि महाप्रभु कीर्तन कर रहे हैं, साक्षात भगवान हमारे हैं, तो कुछ गलत नहीं हो सकता है, तो धीरे से तेज कर। और फिर वो बाहर आकर महाप्रभु के साथ नृत्य करने लगे। महाप्रभु नृत्य करते रहे, अचानक उनको लगा कि कुछ हुआ है। महाप्रभु तो सब जानते हैं ना, भगवान है परमात्मा है। नित्यानंद से पूछा कि क्या हुआ, यहां कुछ अशुभ हुआ है क्या? श्रीवास कहते हैं महाप्रभु जहां आप हो कीर्तन चल रहा हो वहां कभी अशुभ कैसे हो सकता है? कहते नहीं, फिर भी कुछ अप्रिय घटना घटी है। तो फिर महाप्रभु को रिपोर्ट देते हैं, महाप्रभु श्रीवास ठाकुर का जो पुत्र था उसने शरीर त्याग दिया है। महाप्रभु को बड़ा आश्चर्य हुआ कि तुम्हें पता भी है तो भी तुम मेरे साथ नृत्य कर रहे हो, बताओ कहां है वो पुत्र? देखने गए अंदर तो सब बड़ी सिसक सिसक के रो रही थी लेडीज। वहां गए और उस पुत्र को देखा और उसको इशारा किया, उठो। लेटा हुआ बच्चा उठ गया और फिर महाप्रभु ने पूछा तुम कहां हो, तुम कहां चले गए? उसने बोला महाप्रभु आप तो साक्षात कृष्ण हैं, मैं आप ही की योजना से तो इस परिवार में आया था, आप ही की योजना से इतने समय तक रुका और अब आप ही की योजना से मैं संसार में छोड़कर किसी दूसरी, आप ही की योजना से किसी दूसरे परिवार में या अपनी नित्य सेवा में जा रहा। इतना बोला हाथ जोड़े फिर लेट गए, ठीक है ना? ड्रामा में भी तो ऐसे होते हैं, खेल रहे हैं कूद रहे हैं अचानक पता चलता है ये तो भी जिंदा है। पुरानी फिल्मों में अगर आपने देखा हो, मतलब सभी फिल्मों में ऐसा होता है कि जैसे एक दोस्त थे, बहुत अच्छे दोस्त थे, एक फिल्म में थे और उसमें एक दोस्त मर जाता है अंत में, पता नहीं कौन मरता है दोनों में से, बट वो अगली फिल्म में फिर इकट्ठे काम कर रहे होते उस फिल्म को देखकर लोग रो रहे हैं, इतना हिस्सा गीला पड़ा उनका, आंसू से उनका मतलब बड़ी बुरी हालत हो गई है कि ये क्यों मर गया। और अगली फिल्म में दोनों इकट्ठे काम कर रहे हैं, समझ आया था सब बेकार है, बट वो फिल्म जब जब उस फिल्म को देखता तब तो रोता है वो। कितना अजीब देश, कितना अजीब सिस्टम। उसी तरह जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो कहता है अरे पागल बना रहे हैं, ये क्या चीज है? इस फिल्म में वो उसकी बहन बनी है, अगली में वो उसकी वाइफ बन जाती है, अगली में उसकी मां बन जाती है, क्या सीन बना रखे, नाटक है। हाँ नाटक है। उसी तरह हम लोग भी संसार में कभी कुछ बनकर आते हैं कभी कुछ बनकर आते हैं, कभी कोई हमारा अपना होता है कोई हमारा पराया होता है। रूपा जी लिख रहे हैं परपट में कि अगर कोई व्यक्ति तुम्हें बहुत कष्ट दे रहा है, जैसे कि चित्र के तो नहीं सोचा, मान लिया ये मेरे को इतना कष्ट क्यों दे गया लड़का, मेरे को कुछ दिन के लिए आया फिर चला गया, हो सकता है मैंने इसको पिछले जन्म में खूब कष्ट दिए होंगे, मेरा शत्रु रहा होगा, तो अभी ये मेरे से बदला लेने के लिए आया, तो बदला नाना प्रकार से लिया जाता है, ऐसे भी लिया जाता है, ऐसे भी लिया जाता है, किसी का अपना बनकर धोखा देकर भी लिया जाता है, और किसी के साथ बहुत प्रेम कर एकदम गायब हो जाना या मृत्यु हो जानी तो भी लिया जाता है। तो ये प्रेम ऐसे था कुछ संतान हुई भाई, किसी के हृदय को दुख देने का, जब किसी से लड़ाई झगड़ा होता है तो हम लोग चाहते हैं ना कि सामने लोग चोट बढ़िया लगनी चाहिए, घर में झगड़े होते हैं ना आप लोगों के, तो क्या होता है उसमें, दो लोगों में जब लड़ाई झगड़ा होता है तो क्या होता है, कभी सुना है आपने, वो बोलते हैं आप जैसा व्यक्ति मैंने कहीं नहीं देखा, आप तो बहुत अच्छे हैं, ऐसा बोलते हैं। वो कहते हैं मैंने तुम्हारी जैसी भी नहीं देखी इसलिए मैंने आपसे शादी की, ऐसा बोलते हैं, ऐसा नहीं बोलते, थोड़ा सा उल्टा होता है, ये सेंटेंस जैसे ही होते हैं लेकिन थोड़े नकारात्मक ढंग से होते हैं, और उन नकारात्मक ढंग से सेंटेंसेस का मतलब होता है कि उसके हृदय को ऐसी चोट पहुंचाई जाए कि धुआं निकलता नजर आना चाहिए। देखा है ना आप लोगों ने, बात होगी इतनी, मतलब आपने देखा कि अच्छा आप ये करते हो, मतलब व्यक्ति मतलब घर पर आता है, हस्बैंड घर पर आते हैं 7 बजे आते हैं, कभी कभार 7:30 भी हो जाते हैं, आप भी तो 8-8, 9-9 बजे आते हो, 8-8, 9-9 बजे, अरे मैं तो कभी भी नहीं आया, हाँ 7 बजे हमेशा आता था, एक बार 7:30 हुए, लेकिन क्या बोला जाएगा 8 और 9, तुम भी तो इतना कैसा खर्च रही हो, 3-3, 2-2 हजार की साड़ी, 10-10 हजार की साड़ियां खरीदते हो तुम, है ना, तो लग रही कि नहीं लग रही, जिसने नहीं खरीदी उसको लगेगी कि नहीं लगेगी, तो जो लेट नहीं आया उसको लगेगी कि नहीं लगेगी, तो हर बात को थोड़ा बढ़ाकर बोला जाता है, और जहां पर बातों से काम चल जाता है फिर वहां पर हाथ उठा दिया जाता है, लगनी चाहिए, है ना, अच्छा उन्होंने तो हाथ छोड़ दिया, अभी अपने को क्या करना चाहिए, मैं कुछ ऐसा करूं जिससे इनकी भी बदनामी हो, मैं बाहर आ जाती हूं, देखो तो इस प्रकार जो है लोगों के परिवार में एक नकली महाभारत चल रही होती है। जब लोगों के बीच में झगड़े होते हैं, लड़ाइयां होती हैं, तो केवल हृदय को टीस पहुंचाने वाली, चोट पहुंचाने वाली बातें बोली जाती है, और फिर इतना ही नहीं, वो जो बातें बोल दी जाती हैं वो एक ऐसा इंप्रेशन देती है हार्ट पर कि पूरी जिंदगी उन बातों के भरोसे जीता है व्यक्ति, जीता नहीं है जलता है, सॉरी कि तुमने मुझे ऐसा बोला था। हम कई बहुओं से मिले हैं जिनकी सास ने उनके आते कुछ बोला था, तो वो बहुएं अब सास बन चुकी हैं लेकिन आज भी परेशान है, क्या क्या जीवन है देखिए। तो जब कोई व्यक्ति गुस्से में हो तो वो स्थान छोड़ देना चाहिए, किसको मार के नहीं छोड़ा देना, जिस स्थान का मतलब है कि तुरंत जो है उस स्थान को छोड़ देना चाहिए, ताकि ना तो उसको ज्यादा बोलने का मौका मिले और ना कोई आप उसकी बात सुनो, ताकि आप उस जवाब दो सको, को मैं बाद में बात करूं, मैं गलती मानता हूं, मैं बाद में आता हूं, चले जाइए, या फिर जो बोले उसको सहले सुन लें लेकिन अपनी जुबान से कुछ ना निकालें, वो ऐसी ऐसी बातें बोलेंगे, वो समझते आप कुछ बोलो, और जो कुछ बोल दे कभी गुस्से में कोई व्यक्ति, तो उसको कभी भी उसको बातों को सत्य नहीं मानना चाहिए, क्यों, क्योंकि गुस्से में व्यक्ति क्या बोलता है, हमेशा लगाकर ज्यादातर गलत ही बोलता है, ठीक है ना, हमारे लोगों से द्वेष ईर्ष्या होने का मतलब ही यह है कि लोगों ने कुछ ना कुछ बोल रखा है, लगाकर बोला है, और उन बातों को आज तक हम दिल में लगा के बैठे और हम लोग परेशान हैं। द्वेषी तरह के लोग भी जो बता रहे हैं आज के इस प्रपट में, कुछ उदासीन होते हैं जिनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, कुछ मध्यस्थ होते हैं बिचौलिए जिसे बता रहे हैं कि जो ठीक है, और तीसरे जो है द्वेषी, ईर्ष्या द्वेष वाले भी हमारे साथ बहुत लोग मिलते हैं, और इस प्रकार जो है हम लोग इस तरह के परिवेश में आकर, परिवारों में आकर अपनी आइडेंटिटी को यही समझते कि हम यही हूं, और अपना पूरा जीवन इसी प्रकार बिता डालते हैं। अगर एक समय का भारत हुआ करता था जब जब सब लोग आत्म साक्षात्कार का प्रयास करते हैं, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई किसी से ईर्ष्या नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई चोरी नहीं, कोई मक्कारी नहीं। कब होता था ये? राम राज्य में। यह जो व्यक्ति भक्त है, सिद्धांत को समझता है, उसका इन शब्दों से कोई लेना देना ही नहीं है, है कि नहीं भाई? अगर वह व्यक्ति भक्त है, उसको मालूम है मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, मैं भगवान का अंश हूं और सेवा के लिए बना हूं, ये मेरी रियल आइडेंटिटी है। इसके अलावा जितनी और डेजिग्नेशन हैं वो सब सेकेंडरी हैं, नश्वर हैं, टेम्परेरी हैं, ठीक है ना? तो मुझे अपने आप को उन उपाधियों से, उन संबंधों से आसक्त नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो सारी आसक्तियां हमारे दुख का, जोर से बोलिए, कारण बनी। लिखकर रखना चाहिए घर पर, मेरी आसक्तियां ही मेरे दुख का। जब कभी दुखी हो, जब कभी परेशान हो, तो उस सेंटेंस के सामने आ जाओ और फिर थोड़ा सा रियलाइज करो, मैं किस वजह से परेशान हूं, कौन सी चिंता है जो मुझे चिंतित कर रही है। तो फिर आप जो भी चिंतन है जिसकी वजह से भी परेशान है, फिर आप देखेंगे ओ मेरा मोह है इस पर, मेरी अटैचमेंट है इस चीज से, और मैं चाहती हूं या मैं चाहता हूं कि ये काम ऐसा होना चाहिए, उसके रिजल्ट से अटैच हूं। तो यही कारण है किस चीज का? हमारे दुख का। तो एक भक्त के लिए ये संसार सुखालय है, और जो भक्त नहीं है उनके लिए दुखालय है। तो कई बार लोग बोलते हैं, जी बोलना आसान है लेकिन करना ना बड़ा मुश्किल है। जब उस परिस्थिति में आओ तो पता चलता है, अरे भाई परिस्थिति तो मालूम तो पड़ गई ना, ये ऐसी परिस्थिति आई है जिसमें मैं अटैच ज्यादा हूं, तो क्या दिक्कत। लेकिन फिर भी हमको चाहिए कि हम प्रयास करते रहे, कि सदैव ज्ञान में रहे। ज्ञान क्या है? कि हम भगवान के सनातन अंश आत्मा है, और उस आत्मा का इस संसार में किसी भी चीज से, किसी भी व्यक्ति से कोई परमानेंट संबंध नहीं होता। तो जब हम लोग इस चीज को रियलाइज करने की कोशिश करेंगे, और ये रियलाइज कब होगी? जब हम लोग भगवान के पवित्र नामों का जप करेंगे सावधानी पूर्वक, भगवान के नामों को सुनेंगे सावधानी पूर्वक, तो हृदय में ज्ञान प्रकाशित होगा, धीरे धीरे अपने आप ही रियलाइज होने लगेगा। कई बार हम प्रयास करते हैं नहीं होता, प्रयास करते हैं नहीं होता, लेकिन जब सिंसियरली हम लोग साधना का पालन करते हैं तो वो चीज जिसके लिए हम प्रयास कर रहे थे, एक दिन देखते हैं वो अपने आप ही वो गुण आने लगा है, ठीक है ना? तो हमारे प्रयासों को देखकर वो गुण, वो कृपा हमारे ऊपर आती। तो हमें चाहिए कि हम सब लोग प्रयास करें कि जो आज ये एग्जाम्पल दिया है, राजा चित्रकेतु जैसे ना बन जाए, कि इतने विदीर्ण हो जाए हृदय कि दुखी में और परेशान में ही रहें, कि नहीं ऐसे ही। जैसे पिछली बार भी जो सुनाया था ना, कि एक साधु गुजर रहा होता है कहीं से, तो क्या देखता है? एक व्यक्ति बहुत विलाप कर रहा है क्योंकि उसकी संतान उसके पास बैठी, वो भी मृत्यु को प्राप्त हो चुकी है। वो साधु उसको भगवद गीता से दूसरे अध्याय से आत्मा के विषय में सुनाता है, नैनम छिदंति शस्त्राणी नैनम भक्ति पावका। कुछ लोग सुनाता ना हन्य ते हन्य माने शरीरे, शरीर के मारे जाने से आत्मा का नाश नहीं होता, जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्यु से, जिसकी भी मृत्यु हुई है उसका जन्म फिर से निश्चित है, कहीं ना कहीं होगा। तो शोक करने की जरूरत नहीं है, उनका तो ठीक है, आंसू पोंछते धन्यवाद। कुछ समय के बाद वही बेचारा व्यक्ति गुजर रहा होता है, एक कमरे से रोने की आवाज आ रही होती है, उसको ज्ञान मालूम होता है, वो दरवाजा खोलता दिखता, अरे वही साधु है ये, तो ये क्यों रो रहा है? और गोदी में बकरी पड़ी है उसकी मरी हुई। अरे गुरुजी ये आप भी रो रहे हैं? कहते हाँ। कहते क्यों? कहते याद है आपने मुझे ज्ञान दिया था जब मेरी संतान मरी थी, तो मुझे शोक से बाहर निकाला था। कहते हाँ। तो कहते वो ज्ञान आपको याद नहीं? कहते हैं अरे वो तुम्हारा लड़का था, ये मेरी बकरी है, मेरी गई है, मैं से दूध पीता था रोज। है ना, तो प्रवचन करना बहुत आसान है। जब किसी का कोई हादसा हो जाए तो लंबी लाइन लगी होती है कंसोल करने वाले की, कुछ बहुत सुनाते लोग, और फिर अगली बार उसका नंबर आया होता है, वो दहाड़े मार मार के रो रहा था, चला गया, चले गई, चला गया। तो कहने का मतलब क्या है कि ये कंसोलमेंट के रूप में यूज करते हैं भगवत गीता को लोग। चलो जी दूसरा अध्याय थोड़ा सा पढ़ लो, जाके बोलना है वहां पर, है ना, ऐसे नहीं चलेगा कब, इसको अपनाना पड़ेगा जीवन में, ठीक है ना। अनासक्त होना पड़ेगा इस संसार से, और जब तक आसक्त रहेंगे यहां के विचारों से, यहां के लोगों से, अपने शरीर से, तो केवल दुख और केवल दुख और केवल दुख, ठीक है ना। तो यही होता रहेगा हमारे से। तो हम लोग इस अध्याय के इस पर्टिकुलर प्रसंग से ये सीखें कि संसार में अटैचमेंट नहीं रखना चाहिए, अपने कर्तव्य पूरे करने चाहिए। अटैचमेंट डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि ठीक है आज प्रभु जी आपने सुन लिया, आज तो घर ही नहीं जाऊंगा, फोन पे फोन आ रहे हैं, मैं अटैच ही नहीं हूं जी, मंदिर में खाली है जी, मैंने प्रसाद नहीं आऊंगा, ठीक है ना। वहां पति भूखे बैठे हैं, फास्ट रखा हुआ उन्होंने, फास्ट हो गया उनका आज, और श्रीमती जी आज ही पूरा दिन, ऐसी ऐसी डिटैचमेंट नुकसान कर सकते हैं, है ना। तो फल्गु वैराग्य नहीं दिखाना, फल्गु वैराग्य समझ गए, कई तरह के वैराग्य होते, मरघट वैराग्य, मरकट वैराग्य, फल्गु वैराग्य। तो मरकट वैराग्य वो है जो शमशान तक रहता है, मरघट सॉरी, है ना, कट कट में आप देख रहे हैं कौन सा है, बट जो एक शमशान होता है, मरघट बोलते हैं ना शमशान में, तो उधर में क्या देखते हैं कि सभी लोग वैरागी हो जाते हैं कुछ समय के लिए। ना एक बार प्रसंग भी सुनाया था कि एक व्यक्ति किसी बहुत सेल्फ रियलाइज आदमी से मिलने जाता है, बड़ा नाम सुना था उसका, तो वो घर पे नहीं होती, उनकी वाइफ कहती है कि वो तो है नहीं, वो तो आज किसी की अंत्येष्टि में गए, पंजाबी बाग शमशान गए। कहते अच्छा, कहते बट मेरे को मिलना था, बहुत जरूरी काम था। तो कहते वहीं चले जाओ, मिल जाएंगे। कहते अच्छा, तो कहते हैं कि कैसे पहचानूंगा उनको मैं। कहते हैं उनका तो मस्तक हमेशा चमकता रहता है, ही इज अ सेल्फ रियलाइज पर्सन। कहते अच्छा, वो जाते हैं शमशान घाट पंजाबी बाग, अंदर एंटर करते हैं तो एक तो सारे लोगों के मस्तक चमक रहे। कहते हैं भी वो कौन सा जिसे मुझे मिलने। वापिस आते हैं, कहते हैं मैडम वो तो सारे सबके चमक रहे थे। कहते अच्छा, तो कहते कहां देखा आपने। कहते शमशान के अंदर। कहते नहीं नहीं आप बाहर खड़े हो जाओ शिवजी की मूर्ति से बाहर। और जब लोग बाहर आएंगे ना तो तब आप पहचान जाओगे। कहते अच्छा, वो फिर गए तो क्या देखते हैं, वो सब लोगों ने हाथ जोड़े, सब लोग लाइन में खड़े हैं, निकलने लगे लोग, तो सबके मस्तक चमक रहे हैं, तो धीरे धीरे उनका बल्ब फ्यूज हो रहा है, धीरे धीरे मस्तक फिर से काले पड़ रहे हैं, लेकिन एक आदमी निकला उसका फिर भी चमक रहा है। कहता यही है, तुरंत प्रणाम करता है। कहते महाराज आपसे मिलने आए, इतनी दूर से आया था। कहते अच्छा, बोलो क्या काम। कहते पहले तो ये प्रश्न का उत्तर दो, ये सबके बुझ गए और आपके चमक रहा, अभी क्या कारण, और सबके क्यों चमक रहे थे। तो उन्होंने कहा कि शमशान में आके ना जब व्यक्ति मरता है जिसको जला रहे होते हैं तो लोग कहते हैं कितना अच्छा आदमी था, कितना कुछ नहीं किया इसने, कितना इकट्ठा किया, लेकिन अंत में खाली हाथ चला गया, इस संसार में कुछ साथ नहीं जाता। तो रियलाइज हो जाता, वो थोड़ा सा वैराग्य आ जाता उसके हृदय। कहते अच्छा, तो कहता अंदर तब तक चलता था, अभी सब बाहर आ गए तो सबके फोन बजने लगे, साहब माल भेज दूं, साहब पेमेंट भेज दूं, साहब ये लो लो, साहब वो कर लो, वाइफ का फोन, सब्जी लेते आना। कहते सब भूल गए। तो कहते अच्छा, कहते जिसको याद रहता है उसका चमकता रहता है। अभी आप ऐसे मत देखना, इनका भी नहीं चमक रहा, इन प्रभु जी का भी नहीं चमक रहा, ये तो मंदिर में आते हैं, इनका भी नहीं चमक रहा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि ये है मरकट वैराग्य। एक मरकट वैराग्य बंदर जैसा वैराग्य, सब छोड़ छाड़ के नंगे घूम रहे हैं, कहां पेड़ों पे, और वो तो है ही ऐसा, उसमें करना क्या है, है ना। तो वो वैराग्य भी नहीं चलता। एक फल्गु वैराग्य, एक नदी है, कहां पर है ये नदी, गया में, श्याम कृष्णपुर ने स्नान किया होगा उसमें, तो वो नदी भी ऐसी है जैसे लगता है कि नदी है, बट वो नदी नहीं। तो हम लोगों को भी कई बार लगता है कि माला पकड़ ली, तिलक धारण कर लिया, या कई मंदिरों में चक्कर लगाते हैं, नराते रख लिए, सब कुछ कर लिए, बहुत भक्त है जी, तो ऐसा काम नहीं चलेगा। फिलॉसफी को उतारना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। और जब अप्लाई कब होती है, जब सिचुएशंस आती हैं, उस समय ज्ञान से काम लेना पड़ेगा, ठीक है ना। नहीं तो क्या होगा, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। तो इसलिए हम लोगों को चाहिए कि इन ग्रंथों के द्वारा, श्रीमद् भागवतम में इतने सुंदर ढंग से सारी चीजें बताई गई हैं, इतने सारे प्रसंग हैं, हमें चाहिए पढ़ें इनको, समझें इनको, अपने जीवन में उतारें, ठीक है ना। यहां पर और आध्यात्मिक जगत में बहुत बड़ा अंतर है। यहां पर केवल कष्ट, दुख और समस्याएं हैं, और वहां पर केवल आनंद और केवल आनंद और केवल आनंद, ठीक है ना। तो हम प्रयास करें, अगर इस चीज को हम लोग समझ जाते हैं तो निश्चित रूप से हम लोग अपने जीवन में आने वाली उन समस्याओं, उन घटनाओं के प्रति भी तैयार रहेंगे, है ना, स्पिरिचुअली स्ट्रांग रहेंगे, और वो हमको कभी डिस्टर्ब नहीं कर पाएगी जब वो घटित होगी, ठीक है ना। तब इस ज्ञान का एप्लीकेशन होगा। हरे कृष्ण। किसी को प्रश्न या जिज्ञासा है? शांत। वैराग्य बढ़ाने का क्या और उपाय है? बताते हैं, भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। और भक्ति का मतलब है नवदा भक्ति, या जो 64 अंग है भक्ति की। तो जब हम लोग श्रवण करेंगे अधिक भगवान की कथा का, श्रीमद् भागवतम का, हरि नाम को ठीक प्रकार सुनेंगे, भगवान का स्मरण करेंगे, उनका दर्शन करेंगे, तो ये भक्ति के अंगों का पालन हो रहा है। लेकिन इन सब क्रियाओं को करते हुए समीक्षा जरूर करते रहना चाहिए, इंट्रोस्पेक्शन जरूर होना चाहिए कि इस समय मैं जो सुन रहा हूं, तो जो सुना रहा है उसकी बात पर मैं पूरा फेथ करता हूं कि नहीं करता, उसके प्रति मेरी पूरी रिस्पेक्ट है कि नहीं। जब मैं हरिनाम ले रहा हूं तो उस समय कहीं मटीरियल डिजायर तो मुझे घेर के नहीं बैठी। इतनी समीक्षा करते रहना चाहिए कि जो मैं डिवोशनल सर्विस कर रहा हूं उसमें कहीं कंटेमिनेशन तो नहीं है भौतिक इच्छाओं का, राग और द्वेष का। नहीं तो क्या होता है, पानी तो डल रहा है तो जो वीड्स उगी हुई है साथ में उनमें पानी डलता रहता है, वो भी स्ट्रांग होती रहती है। इसलिए वैराग्य आने में, ज्ञान आने में, भक्ति आने में समय लगता है। भक्ति का पालन हो रहा है लेकिन वैराग्य उत्पन्न नहीं हो रहा। और वैराग्य का मतलब ये नहीं है कि हम लोग सब कुछ छोड़ देना ही वैराग्य नहीं है, एक सिम्टम है ये, लेकिन भगवान बता रहे हैं कि संन्यास लीजिए। कैसे? यहां से। अगर परिवार में है, जिम्मेवारियां हैं, तो पूरी करेंगे, लेकिन अनासक्त होकर, ठीक है ना, तो आगे बढ़ पाएंगे। तो इसलिए अगर भक्ति का ठीक ढंग से पालन कर रहे हैं तो हृदय में ज्ञान भी आएगा। और ज्ञान का मतलब क्या है? ज्ञान का मतलब है वैराग्य तो अपने आप आएगा। अगर कोई व्यक्ति सही प्रकार से ज्ञान की ओर बढ़ रहा है तो वैराग्य आएगा ही आएगा। अगर कोई व्यक्ति सूर्य की रोशनी में चल रहा है तो परछाई आएगी आएगी। उसी प्रकार ज्ञान का मतलब है कि मैं ये रियलाइज कर पा रहा हूं, या मैं देख पा रहा हूं कि मैं इस शरीर से अलग एक व्यक्ति हूं, सोल, आत्मा, और मैं वो अंश भगवान का, और मैं केवल सेवा के लिए बना हूं, इतना बिजनेस मेरा। तो जब व्यक्ति इस प्रकार ज्ञान में आता है तो फिर वो समझ जाता है कि इसका मतलब क्या हुआ, जो इस संसार की चीजें मुझे डिस्टर्ब कर रही है ना, सुबह दोपहर शाम चिंता कर रही है, जिन चिंताओं में मेरा मन लगा हुआ है, तो उन चिंताओं से भी मुझे कुछ नहीं होना चाहिए क्योंकि मैं तो आत्मा हूं। वो जो मैंने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, जो फ्यूचर प्लानिंग की है, उसका भी कोई योगदान नहीं है क्योंकि मैं आत्मा हूं। उन संबंधियों का दूर होना या उनका मुझे कुछ कहना, वो भी मुझे किसी प्रकार का असर नहीं डालता। क्यों? क्योंकि मैं आत्मा हूं। तो ज्ञान का मतलब ही है कि मैं धीरे धीरे अपने आप ही वैराग्य की ओर बढ़ जाऊंगा। फिर मुझे ऐसी परिस्थितियां नहीं चाहिए कि मेरे को केवल एसी में ही नींद आती है। तो ये कंडीशनिंग है, मैं किसी भी परिस्थिति में सो सकता हूं क्योंकि मैं शरीर नहीं हूं। मैं शरीर के सुख और दुख से, उसकी कंफर्ट जोन से बंधा हुआ हूं, इसलिए मैं आसक्त हो जाता हूं उन सब चीजों से, कंफर्ट जोन से जाकर मिल जाता हूं। मैं ऐसा नहीं पहनूंगा, मैं ऐसा पहनूंगा, नहीं, हर चीज ज्ञान में होनी चाहिए। तो जब ज्ञान होगा तो वैराग्य साथ आएगा। और ज्ञानी व्यक्ति को कभी कोई शब्द, चाहे कटु शब्द हो चाहे प्रेजिंग वर्ड हो, डिस्टर्ब नहीं करते, ये वैराग्य है। उस पर कम हो चाहे ज्यादा हो, धन प्रॉपर्टी सुंदरता, उसे कोई फर्क नहीं, ये वैराग्य है। वैराग्य का मतलब ये नहीं खाली घर छोड़ दिया वैराग्य, नहीं नहीं नहीं, कितने घर छोड़ने वालों को हमने देखा है कि जो वापस आ जाते हैं घर बाद में, या उनको फिर वहां पर चिंतन शुरू हो जाता है घर परिवार का, फिर आना पड़ता है, या घर में वैराग्य ले भी लेते हैं लेकिन उसके बावजूद सोकल देखने में वैराग्य, क्योंकि उस वैराग्य में एक अलग आनंद है, उसमें जो मान है, उसमें जो सम्मान है, उसमें जो रिस्पेक्ट है, वो उसको भी नहीं खोना चाहता और घर भी नहीं जाना चाहता, ऐसा वैराग्य। तो वैराग्य का मतलब है कि व्यक्ति हर परिस्थिति के लिए तैयार रहे, किसी भी परिस्थिति में उसको कोई भौतिक जगत के पांच तत्वों से बनी हुई चीज डिस्टर्ब ना करे, कोई विचार, कोई चिंता, कोई चिंतन उसको डिस्टर्ब ना कर सके, तो ये असली वैराग्य है। तो ऐसी परिस्थिति वाला व्यक्ति सदैव, उसका लक्षण प्रसन्न रहेगा, हमेशा खुश रहेगा, आनंद रहेगा, आनंदित रहेगा। दो तरह से, एक आनंद होता है बाहर से भी छलकता है और एक होता है जो लग छलकाता नहीं है, अंदर ही अंदर होता है। तो कई बार ये ना सोचते कि जो ज्यादा मुस्कुरा रहा है, ज्यादा हंस रहा है, वो वैरागी है। जो शांत है वो भी हो सकता है, वो जैसे ऋषभ देव जी थे, वो हंसते थोड़ी रहते थे नहीं, वो शांत है, जड़ भरत महाराज वो शांत रहते थे लेकिन अंदर ही अंदर आत्मा रमण करती रहती, ठीक है ना। तो इस तरह वैराग्य जो है हमारे अंदर खुली। और कोई प्रश्न? ठीक है। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की, शिल प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे।